तफसीर देखेंगे आयत नंबर 17 से 17। मसलुहुम का मसल लज़िस्तौक़द नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर क्या हुआ? फलम्मा अद्वाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून। फिर जब रोशन कर दिया आग ने इसके आसपास को, तो जायल कर दी अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया इनको अंधेरों में कि वो कुछ देख नहीं सकते। और कैफियत क्या है उनकी? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, बस वो न पलटेंगे। ये थी पहली मिसाल। अभी तक हम मुनाफिकों के बारे में थोड़ा सा देख चुके कि निफाक क्या होता है। दो रुखी ज़िंदगी का नाम है, दोगली पॉलिसियों का नाम है, मुफादात को ना छोड़ना और कुर्बानियाँ देने से घबराने का नाम निफाक है। अल्लाह के दीन को अपने दिल की खुशी न बनाने का नाम निफाक है। अब अल्लाह ताला मुनाफिकों की कैफियत को समझाने के लिए दो मिसालें हमारे सामने रखते हैं। पहली मिसाल जो है आयत नंबर 17 से 18 तक है और दूसरी मिसाल आयत नंबर 19 से 20 तक है। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो इंशाल्लाह निफाक को वाज़े तौर पे समझ सकेंगे और इंशाल्लाह ताला इन दोनों मिसालों की रोशनी में पिछली आयतों को भी हम मज़ीद समझ सकेंगे। यहाँ पहले एक छोटी सी बात समझ लें ताकि फिर बात समझना मज़ीद आसान हो। मुनाफ़िकत दो किस्म की होती है। जब भी मैं कोई लफ्ज़ बोलूँ ना तो उसको फ़ौरन अमली ज़िंदगी में ले आया करें कि कॉल और फेल का तज़ाद या इस्लाम पर अमल ना करना, ये दो तरह का होता है। एक क्या है कि दिल में ही इस्लाम नहीं है। सोचिए ज़रा, कोई शख्स इस्लाम को पसंद नहीं करता लेकिन किसी मजबूरी से उसको मुसलमान होना पड़ा। तारीखी मिसालों को बाद में देखें, अगर लिटरली इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको बात समझ में आने के लिए दे दूं कि कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी या उसके घर वालों की शर्त है कि तुम शादी तभी कर सकते हो जब तुम इस्लाम कबूल करोगे, उसको कुछ इस्लाम से गरज नहीं बल्कि हो सकता है इनादी हो, लेकिन उस लड़की को पाने के लिए वो मुसलमान होता है। दिल से ना उसका इरादा है इस्लाम कबूल करने का, ना वो दीन में आना चाहता है, कुछ भी नहीं है, बस एक नाम की बात है। ऐसा इस्लाम यानी क्या है असल में? निफाक है। कौन सा? एतिकाद। एतिकाद क्या है? अकीदा। यानी उस बंदे के दिल में इस्लाम था कोई नहीं, सिर्फ किसी मसलहत की तहत वो मुसलमान हुआ। इसकी अमली मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना में जो लोग बसते थे बहुत लड़ते झगड़ते थे। अभी नामों में ना उलझें, बाद में सारे नाम आगे आते जाएंगे, बस कहानी की तरह लिखें इस बात को और सब लिखेंगे। कोई ऐसा है जो अभी तक नोट्स नहीं लेता? हैंड रेस करेगा? रेगुलर्स या लिसनर्स में से लिखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आपके ये प्रिंट्स आपके लिए काम आएंगे। मैं अपनी बात को दोबारा शुरू करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो मदीना की ज़रा सी सिचुएशन समझ लेते हैं। दो तीन किस्म के लोग वहाँ बसते थे। कुछ तो काफिर थे, भाई भी थे आपस में, लेकिन फिर भी भाई भाइयों में इख्तलाफ शुरू हुए तो लड़ना शुरू हो गए। दूसरे वहाँ यहूद भी थे। अब होता क्या था, दोनों लड़ लड़ के परेशान हो रहे थे। जंगे बुआस नाम की एक जंग मदीना की हिस्ट्री में मिलती है जो 200 साल तक जारी रही, नस्लों की नस्लें उसके ज़रिए से ख़त्म हो गई, इतना लड़ते थे, लड़ाका कौम थी। बिल आखिर क्या हुआ कि लोगों ने मिल बैठ कर एक फ़ैसला किया कि कब तक लड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए इंसान लड़ लड़ के भी थक जाता है आखिर। कुछ बात करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों कबीले, औस और खजरत जो हैं, हम सारे मिल के किसी एक शख्स को अपना लीडर मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, इसी तरह किसी एक जगह दो लीडर नहीं रह सकते। ये तौहीद हमें कायनात से भी दिखती है। अल्लाह एक इसीलिए कि दो खुदा होते तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लफसदता, जमीन और आसमान बिगड़ जाते हैं। बहरहाल किसी एक को लीडर मान लेते हैं ताकि सबके फैसले वो करे और ये झगड़े खत्म हो। कहा ठीक है। उस वक्त जिस शख्स का नाम सिलेक्ट हुआ उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई कबीला खजरज से था, माल और दौलत वाला शख्स था, बहुत मशहूर था, जैसे आज के दौर में आप कह लें सियासी शख्स था। लोगों ने कहा कि ठीक है, खजरज ने तो ऑफ कोर्स कहना ही था क्योंकि उनके कबीले का था, उनकी जमात का था, लेकिन औस ने भी गिव अप कर दिया कि बस ठीक है, लीडर तो एक ही होना है, चलो जी हम मान लेते हैं। ये बात डिसाइड हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी रस्म यानी ताजपोशी की रस्म की तैयारियां हो रही थी, जैसे आप कह लें कि ऑफिशियली अब ये अनाउंस कर दिया जाए और एक फंक्शन खड़ा किया जाए जिसमें लाके ताज इसके सर पे रख दिया जाए कि उसकी वजह से ये अनाउंस हो जाए कि ये शख्स आज के बाद लीडर है। अब हुआ क्या कि जिन दिनों में ये सारी कार्रवाई चल रही थी तो तला उबद्रु अलैना की मिसदाक अल्लाह के नबी सल्लम का मदीना में जहूर हुआ। जब आप मदीना में आए, आपकी तालीमात और आपकी जिंदगी गुजारने की चीजें और जो लीडरशिप क्वालिटीज लोगों ने आप में देखी, तो हुआ क्या कि लोगों की तवज्जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गई। कल तक जो मसले उठ के काब बिन अशरफ यानी यहूद के उलमा के पास जाते थे, उनकी भी तवज्जो इधर हुई। और देखिए, ये फितरत का असूल है। छोटी सी बात एक साइड पॉइंट करके अपने नोट्स में लिख लें कि फितरत का असूल है, छोटे बल्ब के मुकाबले में जब बड़ा बल्ब जलेगा ना, छोटे बल्ब की रोशनी मंद पड़ जाएगी। आप जितनी मर्जी लाइट्स चला के बैठे, रात को वही लाइट्स आपको बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं, लेकिन जब दिन में आप इस लाइट को जलाते हैं ना, तो उतनी लाइट नहीं लगती। क्यों? कि अब सूरज निकल आया है। इसी तरह आप देखें कि रात के अंधेरे में एक छोटा सा नाइट बल्ब भी आपको पूरी रोशनी दिखाता है, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना, तो छोटी सी शख्सियत भी नुमाया हो जाती है। बात अच्छी नहीं, लेकिन बात कहते हैं अंधों में काना राजा। जब चारों तरफ कुछ भी नहीं होता ना, तो छोटा सी भी चीज़ नुमाया हो जाती है, लेकिन उसी नाइट बल्ब के मुकाबले में आप अपने कमरे का रेगुलर बल्ब चला देंगे ना, तो नाइट बल्ब दब जाएगा। हकीकत पसंदी क्या है कि मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अब बड़ा बल्ब है, इसको एक्सेप्ट कर लो। बस उसको एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि आप भी उससे फायदा उठाएंगे और दूसरे भी उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग इस बड़े बल्ब के आगे रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं कि इसकी रोशनी किसी को ना पहुंचे। ये ऐसी है जैसे कोई एथियस्ट खुदा की खुदाई को ना माने कि सूरज क्या, मैं इसके मुकाबले में एक बड़ा सा गैसों का मजमुआ बना के एक जला देता हूं और जब सूरज आएगा तो मैं उसके आगे चादरें तान दूंगा। कोई तान सकता है? आप अपने घर के अंदर काले पर्दे लगा के दिन में रात का समा कर लें, आपकी मर्जी है। सूरज में जाएं आंखें बंद कर लें, आपकी मर्जी है। ये आप अंधेरे में रहेंगे लेकिन सूरज अपनी जगह मौजूद रहेगा। यही मामला उस दौर में अब्दुल्ला बिन उबई और नबी सल्लम के मामले में हुआ। उसने जब देखा कि ये क्या हुआ, मेरा मामला तो पीछे लग गया और लोग चल पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो दिल में जलने भरने लगा। ये थी वो मेन रीजन जिसको आप कहते हैं ना रूट कॉज, इस शख्स के दिल में इस्लाम के बुग़्ज़ की, किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हरीफ माना। हरीफ किसको कहते हैं? दुश्मन, ओपोनेंट, अपोजर। हालांकि उस वक्त अगर ये आपको अपना साथी मान लेता ना, तो अल्लाह के नबी ने इसको बड़ा अच्छा नुमाया रुतबा दे देना था, क्योंकि आप लोगों को हमेशा वही काम देते थे जिसके वो अहल होते हैं। और यकीनन इसमें खूबियां थी, इतने लोगों में जब लोगों ने इसको चुना था तो यकीनन खूबियां थी, तो इसको चुना जा सकता था। लेकिन ये तासुब में आ गया। हुआ क्या कि दिल में जलने लगा, ताजपोशी का मामला तो पीछे पड़ गया और लोग अल्लाह के नबी सल्लम के साथ उस मिशन में शामिल होने लगे। दिन ब दिन इस्लाम की कुव्वत में इजाफा हुआ। होते होते एक साल गुजरा तकरीबन, तो गज़वाए बदर का वाक्या पेश आया जो यौमुल फुरकान के नाम से कुरान पाक में याद की जाती है। ये वो जंग थी कि जिसमें मुसलमानों को बहुत थोड़े असबाब के साथ अल्लाह ताला ने मेमोरियल किस्म की, तारीख साज किस्म की फतह दी। बस ये था वो वक्त जिस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात डिसाइड की कि इस्लाम से बाहर रहकर मैं इस्लाम को नुकसान नहीं दे सकता, कौन आने देगा उसको अपनी जगहों में, कौन अपनी मजलिसों में, मीटिंग्स में उसको बैठने देगा। लिहाजा उसने दिल में सोचा कि मैं मुसलमान होता हूँ ताकि मैं मुसलमानों की सफ़ों में घुस सकूँ और अंदर फितने डालूँ। इस सोच के साथ इसने ग़ज़वे बदर के बाद इस्लाम कबूल किया। तो ये इस्लाम क्या था? एतिकादी निफाक। समझ आ गई? एतिकादी निफाक क्या होता है कि आपकी नीयत कोई और है, मोटिव कोई और है, इंटेंशन कोई और है, वजह कोई और है, लेकिन आप दिखाते हैं कि आप इस्लाम पे आए। अब ऐसा शख्स है, और फिर बाद में इसने क्या किया, इंशाल्लाह ताला कुरान खुलेगा तो आप खुद ही देखेंगे कि बदर में ये मुसलमान हुआ था के बाद पहली जंग थी, और तबूक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी जंग थी, तकरीबन 9 साल का फ़र्क है इन दो जंगों में। हर मौके पे इसने अल्लाह के नबी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, फितने पैदा किए। अगले ही साल ग़ज़वे उहद में जब गया तो ऐन जंग से पहले मुकामे शौत पे 300 लोगों को अपने साथ मिलाया और ग्रुप से अलग हो गया, क्योंकि ऐसा एक शख्स किसी ग्रोह में आ जाता है ना तो वो बाकी सब का भी शिराज़ा बखेर देता है। नतीजा क्या हुआ कि इसने हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगवाई और बहुत कुछ हुआ। तो ये होता है एतिकाद का निफाक। इसमें क्या होता है कि दिल में इस्लाम के लिए शकूक व शुबहात है। आज के दौर में इसकी अमली मिसालें, मसलन के कुछ लोग नाम से तो मुसलमान हैं, ऑफ कोर्स माँ बाप मुसलमान थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में पले नॉन मुस्लिम फ्रेंडशिप थी। अब प्रोपेगंडा सुनते सुनते उनके भी दिल में अब इस्लाम के लिए शक आ चुका है, वो भी कहते हैं वाकई इस्लाम सच है। और ये होता है, याद रखिए कि नेगेटिव प्रोपेगंडे का भी असर ज़रूर होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे सामने किसी को जितना मर्जी बुरा कहे मैं उसको अच्छा ही समझूंगी। माँ जब किसी बेटे की बीवी की बुराइयाँ उसके सामने बार बार करती रहती है ना, तो बेटे के भी दिल में आने लगता है कि हो सकता है मेरी बीवी ऐसी है। इस तरह जो बीवियाँ अपने शौहरों के साथ अपनी सासों या अपनी नंदों की बुराइयाँ करती रहती हैं ना, तो एक वक्त आता है कि उनके शौहर वाकई सोचने लग जाते हैं कि हमारी माँ बहनें ऐसी हैं। अपोजिट का असर पड़ता है। बहरहाल अब हुआ क्या कि ये तो था एतिकादी निफाक, इसको खूब अच्छी तरह समझ लें और साथ ही साथ हम सब अपने दिलों को देखें। अगर मुसलमान होने के बावजूद हमारे दिल में पहली बात है कि इस्लाम के लिए डाउट्स हैं, ये शक क्या पता इस्लाम ना ही सच्चा मज़हब हो। मुझसे किसी ने कहा, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सुनते हैं दोस्तों से फ्रेंड से, तो एक माँ कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे कहता है कि मम्मी क्या श्योरिटी है कि मुसलमान ही सही है, हो सकता है क्रिश्चियन का रिलीजन ठीक हो। और ये बातें तो आपने आम सुनी हुई है ना कि जी सारे दिन ठीक है, जिहाद का इनकार तो आप देखिए कि आम हो चुका है। यानी इस वक्त हमारे मुसलमानों में एक कसीर तबका ऐसा है कि जिसको दीन पर शक हो चुका है। नमाजों को वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रे करते जाओ, जहाँ दिल चाहे अल्लाह को याद कर लो, वो नमाज हो गई। जिहाद तो वैसे ही ज़ुल्म और ज़्यादती है, किसी को बुरा ना कहो, ये ना कहो कि मुशरिक जन्नत में नहीं जाएंगे और दिस एंड दैट। तो ये सारी किस्म के मुसलमान आएंगे एतिकाद, यानी जड़ें खोखली हो गई। चलिए अब दूसरी किस्म का एक निफाक होता है, इसको कहते हैं ये क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से कम दर्जे का है। इसमें क्या है कि इस्लाम में कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बन वाली कैफियत है। इस्लाम वाकई बड़ा प्यारा लगता है, हर चीज़ इस्लाम की अच्छी लगती है, लेकिन ज्यों ही अमल का मौका आता है ना तो सुस्ती हो जाती है। फ़र्क दोनों में क्या है? एक शख्स कहते हैं नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं नहीं मानता नमाज भी ज़रूरी है, वो है एतिकाद का ईमान, उसकी जड़ें खोखली हैं। दूसरा कहता है नहीं नमाज पढ़नी चाहिए, पर मैं क्या करूं कि मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, मेरी छूट जाती है, पीछे कर दी, डिले कर दी, दो दो नमाजें मिला के पढ़ी। तो ये दूसरा शख्स भी मुनाफिक होगा, लेकिन इसका निफाक अमली निफाक है। दोनों को अगर आप टैली करें ना आपस में दोनों के, एक तरफ अमली निफाक और एक तरफ एतकादी। एतकादी मुनाफिक का मामला क्या है? हमेशा की जहन्नम, क्योंकि वो एतकाद है ही नहीं जो जन्नत में ले जाने के लिए जरूरी था। पहली बात, ये अगर इसी हाल में मारे गए तो ये जहन्नमी है। और इसकी मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई है। इसके नाम इसलिए मैंने लिया कि इसकी वाज़ रिवायात मौजूद हैं, सूरत तौबा में हम पढ़ेंगे। और हत्ता के इस शख्स के लिए नबी सल्लम ने दुआ की, जब ये फौत हुआ तो इसका बेटा जो था उसका भी नाम अब्दुल्ला ही था, बड़े मुखलिस सहाबी थे, नबी सल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं जानता हूँ कि मेरा बाप गलत था या मेरे बाप के अंदर कमियां थी, लेकिन आखिर इस्लाम का नाम तो लेता था ना, मेरा दिल करता है कि वो किसी तरह अल्लाह उसको बख्श दे। कहा, आप क्या चाहते हो? कहा, पहली बात यह है कि आप ये अपना कुर्ता उतार दें जो आपने पहना हुआ है, और मैं इस कुर्ते में अपने बाप को कफन दूंगा। तो हो सकता है नबी का पहना हुआ कुर्ता मेरे बाप को जहन्नुम की आग से बचा दे। अब ये उसकी ख्वाहिश थी। अच्छा, अल्लाह के नबी बहुत रिजिस्ट नहीं करते थे। कहा, अच्छा ये पकड़ो। आपने अपना कुर्ता उतारा, उसको दे दिया। एक तो इस वजह से कि उसने मांग लिया, और दूसरी एक और वजह भी थी कि अब्दुल्ला बिन उबई का एक एहसान था अल्लाह के नबी पे। और वो क्या था कि जब गज़वे बदर में जंगी कैदी आए थे तो उसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे, जो नबी सल्लम के चचा थे, बहुत ऊंचे लंबे चौड़े जिस्म के थे। अब कैदियों में थे, अब कपड़े तो साथ लेके नहीं आते होंगे जंगों में लड़ते हुए, तो उनके जिस्म पे कमीज़ नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछवा के भेजा कि कोई है जो मेरे चचा अब्बास को कुर्ता पहनाए? उस वक्त किसी और का कुर्ता हज़रत अब्बास को पूरा नहीं आया। किसका पूरा आया? अब्दुल्ला बिन उबई का। तो उस कुर्ते के एहसान में अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता दे दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब्दुल्ला बिन उबई आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफन है। फिर अब्दुल्ला उनका बेटा आया, कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बाप का नमाज़े जनाजा भी पढ़ा दें, शायद आपकी दुआ से अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करें। कहा, ठीक है। अल्लाह के नबी चल पड़े। हज़रत उमर ने कंधे से पकड़ा, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कुछ किया? यानी खुलासा है बात का, आपने कहा कि मुझे अल्लाह ने मना नहीं किया तो मैं तो फिर भी करूंगा। इसी से देखिए अल्लाह के नबी का दिल कैसा था। जो आपको एक दफ़ा तकलीफ दे, आप कहते हैं मैं इसकी कभी शक्ल ना देखूं, लेकिन अल्लाह के नबी के दिल में ये सच्ची तड़प थी किसी तरह लोग आग का ईंधन भरने से बचे। क्या इन दोनों चीज़ों ने अब्दुल्ला बिन उबई को किफ़ायत की? नहीं की। वाज़ रिवायतें मौजूद हैं कि इन दोनों ने किफ़ायत नहीं की। तो आज इस बात को सामने रखते हुए, अगर हम में से कोई खाना काबा के अंदर जाके जमजम के अंदर अपना कफन भिगो के ले आए और उसको रख लें कि इसमें कफनाना, शौक से कीजिए, आपका दिल है शौक से करें, कोई मना नहीं करता। लेकिन बाहर के कुर्तों या बाहर के कपड़ों से फ़ायदा नहीं होता, अंदर से फ़ायदा होता है। इस अब्दुल्ला बिन उबई की कब्र में अल्लाह के नबी पहले खुद उतरे थे, इसके दफनाने में आपने मदद की थी, लेकिन असल बात दिल है। जब अंदर खोट होता है ना तो बाहर के बैरूनी लुबादे कुछ नहीं करते। तो बहरहाल ऐसे इतिकादी मुनाफिक के लिए ये हुक्म है कि वो जहन्नुम में जाएगा। दूसरी तरफ का मुनाफिक ये है कि अगर अल्लाह चाहे, जब तक चाहे, जिसकी उसकी मर्जी है, उनके बुरे अमलों की सजा देगा, लेकिन बिल आखिर फिर उनको जहन्नुम से रहाई मिल जाएगी। पहली मिसाल आयत नंबर 17 जो हमने पढ़ी, इसके अंदर एतकादी मुनाफिक की, और आयत नंबर 19 से 20 में अमली मुनाफिक की मिसाल समझाते हैं। पहली मिसाल को दो मुख्तलिफ तरह से देखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ जमायर लिखाऊंगी। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अरबी में उतना सा लफ्ज़ लिखें और फिर उसके आगे लिखें कि इससे क्या मुराद है, क्योंकि टेक्स्ट को साथ लेके जाना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर फिर तफसीर में गलतियाँ लगती हैं। चलिए, मसलुहुम, इनकी मिसाल, किन की मिसाल? लिखिएगा एतकादी मुनाफिक। इसका तरीका ज़रा लिख के दिखाएं इनको ऑन पे। आप अपने नोट्स में एक साइड पे मसलुहुम लिखें, फिर इज इक्वल टू। अरबी सही नहीं लिखनी आती, थोड़ी भी लिख लेंगे बाद में सही कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मसलुहुम, इनकी मिसाल, किन की मिसाल? एतकादी मुनाफिकों की। का मसली मानित मिसाल अल्लज़ी, उस शख्स के। अल्लज़ी से मुराद है यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये ज़मायर गलत हो जाएंगे ना तो तफसीर गलत हो जाएगी। इस तव कदा, जिसने जलाई, नारन आग, नारन से यहाँ मुराद है इस्लाम। फिर क्या हुआ, मैं दोबारा बोलूंगी, सिर्फ जमाइर लिख लें आप। फलम्मा, बस जब, अदा अत मा हौलहु, अदात रोशन कर दिया उसने, किसने किया, लिखें इसमें ब्रैकेट में, इस्लाम ने, यानी इस्लाम की रोशनी फैल गई। मा हौलहु अपना इर्द गिर्द, माहौल से यहां मुराद है मक्का और उसकी सराउंडिंग। क्या हुआ, ज़हब अल्लाहु, ले गया अल्लाह, बिनूरी हिम, इनकी रोशनी। इधर हुम से मुराद हैं कौन, मुनाफिक, एतकादी मुनाफिक। व तरक हुम, और छोड़ दिया इनको, फिर हुम से मुराद एतकादी मुनाफिक। फी जुलुमातिन, अंधेरों में, कौन से अंधेरे हैं, जुलुमात के आगे लिखिए कुफर के अंधेरे, शक के अंधेरे। ला युबसिरून, नहीं देख पाते। यहां इससे क्या मुराद है, इस्लाम की चमक दमक या इस्लाम की तरक्की को वो देख ही नहीं पा रहे, यानी आंखों पे जब पर्दा पड़ता है तो अच्छी चीज भी इंसान को बुरी लगती है, और सूरज की रोशनी होने के बावजूद भी वो उसको देख नहीं पाते। कैफियत क्या है, सुमन, बहरे हैं, किस चीज से बहरे हैं, हक बात नहीं सुन सकते, इस्लाम की बात नहीं सुन सकते। बुकमन, गूंगे हैं, कैसे गूंगे, इस्लाम की तारीफ नहीं निकलती इनकी मुंह से, दिल मान रहे हैं इनके ये बात अच्छी है, जुबान पे जिस चीज की जरूरत नहीं कि इस्लाम की खूबी को बयान कर सकें। और उमयुन, अंधे हैं, कैसे अंधे, कि इस्लाम की खैर सबको दिखेगी लेकिन इनको नहीं दिखेगी। इंजाम क्या है, फहुम ला यरजियोन, वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं पलटेंगे। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस आयत के बारे में कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वापस इस्लाम से पलट आए। तो ये ऐसे ही लोगों की कैफियत है, असल में ये वो लोग हैं कि जो अपने दिल से इस्लाम की तरफ नहीं आए। अब इस मिसाल को समझिए जरा, तसव्वुर में लाएं, एक बिल्कुल खाली जमीन है मक्का की, वहां कुछ भी नहीं, चारों तरफ बुत परस्ती, कुफर, शिर्क के अंधेरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो कुछ लोग मुसलमान हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा इस्लाम की तरफ पलट गए। इस आयत में उनके बारे में बात है। तसव्वुर कीजिए, मक्का का माहौल है, चारों तरफ अंधेरे हैं, हर वो बुराई जो इखलाकी तौर पे किसी कौम में हो सकती है वो उन लोगों में आ चुकी थी, कुफर, शिर्क, बुतों की पूजा, जिना, बदकारी, बेटियों का कत्ल, औरतों को मनहूस समझना, विरासत में उनको हिस्सा ना देना, बिल्कुल इंसानियत अंधेरों में थी। इतने में एक, जिसको कहते हैं हिदायत का सूरज निकलता है, वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लम, आप आए, आपके जरिए से इस्लाम आया, इस्लाम के अंदर चमक थी, और इस्लाम की वजह से लोगों को लगा कि वाह, ये है असल हमारे मसाइल का हल, इसी की रोशनी में हम अपने मसले हल करेंगे। लोग उसकी तरफ चमकने लगे, आने लगे, जैसे कहीं भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो लोग की नज़रें उन पे लग जाती हैं, लोगों की लगी। अब हुआ क्या कि जब लोग कुछ अरसा आ गए उस चीज़ की तरफ, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं ना, उनको लगा कि ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई, ये तो किबले ही बदलने लगे, लोगों की तो डायरेक्शंस बदलने लगी, तो इस्लाम अपनी जगह मौजूद था लेकिन उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और नतीजा क्या हुआ कि वो महरूम रह गए, इस्लाम फैलता रहा। ये नहीं हुआ कि इस्लाम की रोशनी बुझ गई, बाज़ लोग इसकी बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और मैंने बहुत कुरान पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों की ज़ुबान से इसकी, यानी ना समझी की वजह से या डेप्थ में ना जाने की वजह से बहुत गलत तफसीर सुनी, क्योंकि वो समझते हैं कि रोशनी आई फिर बुझ गई। ज़ाहिर आपको आयत पढ़ के भी यही लगता है कि एक रोशनी चली थी फिर उसके बाद वो रोशनी बुझ गई। इस तफसीर से तो मुराद है कि नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लम ने जो इस्लाम का काम शुरू किया था वो काम ठप हो गया, काम नहीं ठप हुआ, लोगों ने आंखें बंद की, वो महरूम रह गए। यहां आप देखिए कि इस्लाम को नूर की बजाय नार कहा गया, इस तौ कदा नारन, बड़ी प्यारी बात है कि इस्लाम नूर की बजाय नार क्यों है। अमूमन तो रोशनी के लिए नूर आता है ना, लेकिन यहां नार का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी कुछ वजूहात समझ आती हैं जब हम गौर करते हैं। पहली बात है कि नार जो होती है ना, आग, ये ये ज्यादा रोशन होती है। नार क्या है? सूरज की रोशनी, मिसाल ले लें, और नूर है चांद की रोशनी। तकाबुल करें तो कौन सी ज्यादा होती है? सूरज की रोशनी होती है। फिर इसी तरह नार की एक खूबी होती है कि ये फैलती है, आग एक जगह लग जाए तो वहां रुक जाती है, फैलती है। इसी तरह बस आपको इस्लाम की, जिसको कहना चाहिए कि दिया सिलाई दिखाने की देर है, अपने हिस्से का दिया जला दें, फिर देखिए कि दिए से दिया टकराएगा और इस तरीके से इस्लाम फैलता जाएगा कि बाज दफा सिर्फ किसी एक शख्स को सिखाया हुआ पूरी जमात और पूरे उसकी कौम और कुंबे को सिखाने के बराबर हो जाता है। फिर इसी तरह देखिए कि यहाँ आग यानी नार का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल हुआ है कि आग चीजों को नरम करती है, पिघलाती है। इसी तरह इस्लाम दिलों को पिघलाता है। एक दफा जब सच्चा इस्लाम किसी के अंदर आ जाता है ना, तो वो पिघल जाता है, बिल्कुल मोल्ड हो जाता है, गर्मी है, जोश है आग के अंदर। फिर इसी तरह आप देखिए कि आग के पास जाना पड़ता है रोशनी के लिए या उससे हरारत लेने के लिए, जबकि नूर खुद ब खुद फैल जाता है। यही मिसाल इस्लाम की है, आपको आना पड़ेगा इसकी तरफ, यह खुद ब खुद आपकी तरफ नहीं आएगा। जितना आग के करीब जाते हैं ना, उतनी हरारत ज्यादा होती है। इसी तरह इस्लाम को जितना करीब से आप देखेंगे ना, उतना आपको इस्लाम ज्यादा रोशन मिजाज लगेगा। आज वो लोग जो दूर दूर से इस्लाम को देखते हैं और सुनते हैं ना मीडिया पे, प्रोपेगंडे में, उनको इस्लाम बड़ा बुरा लगता है। वो क्या समझते हैं? इस्लाम बड़ा सख्त है, औरतें बहुत ओप्रेस हैं, औरतों पे बड़ा जबर है, बहुत सारी पाबंदियां हैं। हालांकि जो सच्चे इस्लाम में आ जाता है उसका क्या हाल होता है? उसको इस्लाम एक प्रोटेक्शन लगता है। छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगी, शायद आपको फायदा हो। से आप जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर जो गाड़ी में बैठा है वो गाड़ी के हेडलाइट्स चलाता है, क्या होता है? वही लाइट उसको रास्ता दिखाती है ना। लेकिन जो गाड़ियां दूसरी साइड से आ रही हैं, ऑपोजिट साइड से आ रही हैं, तो उस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो उसकी आंखों में पड़ती हैं, चुंधियाती है ना। जो लाइट गाड़ी में बैठे हुए को रास्ता दिखा रही है, वही लाइट मुखालिफ सिमत से आने वाले की आंखों को चुंधिया रही है। यही है इस्लाम की कहानी। जो लोग इस्लाम की गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, उनको इस्लाम और उसके कानून और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रास्ता दिखाते हैं। और इसके बरक्स वो लोग जो इस्लाम को ऑपोजिट वे से देखते हैं ना, नेगेटिविटी के साथ देखते हैं, अपोज करने के लिए देखते हैं, इस पे एतराज करने के लिए देखते हैं, तो इस्लाम उनकी आंखों को चुंधिया देता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों की आंखों की चमक को अल्लाह ले लेता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि आग के बारे में एक और चीज भी आती है कि जब उसका सही इस्तेमाल ना करें ना, तो फायदे की बजाय नुकसान होता है। इसी तरह जब इस्लाम को मिस इंटरप्रेट किया जाए, जब इस्लाम को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है ना, तो फायदे की बजाय नुकसान होता है। आज इस्लाम का जो रुख दुनिया को दिखता है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। उन्होंने इस्लाम ऐसा करके पेश किया, कुछ ने तो इतना सख्त और रूखा फीका इस्लाम पेश किया, कुछ ने इतना रिजिड पेश किया कि इस्लाम पे आना लोगों को लगता है दुनिया की हर नेमत छोड़ने के बराबर है, कुछ ने गरीब इस्लाम पेश किया, कुछ ने सफेद और पुराने कपड़ों में पहना हुआ इस्लाम पेश किया, कुछ ने भूखा नंगा पेश किया, कुछ ने मांगने वाला इस्लाम पेश किया। कि कोई तस्वूर ही नहीं कर सकता कि कोई दुनियावी जिंदगी में भी खुशहाल रहते हुए अच्छा मुसलमान बन सकता है। आप जरा थोड़ा सा 20-25 साल पीछे के लोग जो इस वक्त ओल्ड हो चुके हैं उनसे पूछिए, वो कहेंगे इस्लाम का मतलब क्या है? क्या बिल्कुल ना हंसे, ना बोले, ना अच्छे कपड़े पहने, ना आप अच्छी गाड़ी में बैठ सकते हैं, ना अच्छे घर में रहते हैं। अब होता कि जब इनकी तबलीग को सुन के लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, वो पहले ही डर जाते हैं, हाय ये सब छोड़ना पड़ेगा, चलो छोड़ दो इस्लाम को। अब वो चीज़ें तो नहीं छोड़ सकते, इस्लाम छोड़ देते हैं, ये रिएक्शन हुआ। और पिछली सदी की जो तबलीग थी उसमें बरेसगीर पाक हिंद में ये रंग बहुत देखा गया। लोगों ने एक एक्सट्रीम पे जाके इस्लाम का एक रुख पेश किया, नतीजा क्या हुआ कि दूसरा रुख पीछे रहा, लोगों ने इस्लाम से अपने आप को महरूम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अपने दीन के साथ मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम तो दिन ब दिन फैल रहा था, वो 6 से बात शुरू हुई थी मक्का में, अगले साल 12 हो गई थी और उसके साहबाद 72 हुई, और उसके बाद मदीना के हर दूसरे घर में इस्लाम का दिया जलने लगा, लेकिन महरूम कौन रहे जिन्होंने इसका इनकार किया। मुनाफिकों की आंखों का नूर चला गया, उनको कुछ भी फायदा ना हुआ। और बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की ये बदबख्ती की बात होती है कि उनके करीब पास चीज़ होती है लेकिन उनको वो नज़र नहीं आती।